सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणं सिद्धे वियुद्धशयले अज्जत्थ बहित्थ बन्धनं मुके भक्तिये अहं नमिं पुनो पुनो बन्धनं मोक्षं। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। 14वीं पुस्तक जो पंचम वर्गणा खंड, उसमें बंधन अनुयोग द्वार की चर्चा चल रही है और उसमें भी बंधनीय की प्ररूपणा चल रही थी। हमने 23 प्रकार की वर्गणा देखी है, अब उसी के बारे में गुणकार आदि का स्वरूप भी कल देखा था हमने। हम पृष्ठ संख्या 127 पर आ गए, 127। देखो कल वो पुद्गल के वर्गमूल के अनंत गुणा ऐसा लिखा था ना, इसमें भी मिला वो रेफरेंस, अभी मैं देख रही थी। हाँ, समय ज्ञान चंद्रिका में मिला है, अभी मैंने कहा। देखो 686 पृष्ठ पर लिखा है, परमाणु वर्गणा तय लगाई सांतर निरंतर वर्गणा पर्यंत 15 वर्गणा समान परमाणु निका स्कंद रूप लोक विषय पुद्गल द्रव्य का जो प्रमाण ताका जो वर्गमूल ताका अनंत गुणा किए जो प्रमाण हो तितनी तितनी पाइए है। कल हमने देखा था वो कितनी कितनी वर्गणा पाई जाती है उसकी बात। और ये जो हमने अग्नि का एक जीवों का भी देखा था दावा नल वगैरह, तो उसमें तो नंदीश्वर नामा द्वीप में अकृत्रिम चैत्यालय है, वहाँ धूप के घड़े हैं, तीन में भी जितने वो अग्निकायकों का समूह है उसको भी लिया है। वहाँ पर हमने वो लता दाह वगैरह वगैरह देखा था ना। ये हमने वो कल ये जो हमें प्रश्न था ना कि एक समय में 108 जीव जाते हैं, तो हमने तो जघन्य होगी तो 4 ही वर्गणा देखी और मध्यम 8 देखी और उत्कृष्ट 2 देखी, तो उसमें मैक्सिमम होगी तो 4 होगी, इस तरह से उसमें है। हाँ देखो ये 687 पृष्ठ पर लिखा है, ये जो ये 3 वर्गणाओं के बारे में लिखा है, प्रत्येक शरीर वर्गणा, बादर निगोद वर्गणा और सूक्ष्म निगोद वर्गणा। हमने अयोगी के अंतिम समय में प्रत्येक शरीर वर्गणा देखी थी, तो कहते अयोगी केवली के अंत समय में पाए ऐसे जघन्य प्रत्येक वर्गणा, सो लोक में होई भी वा न भी होई, कभी होगी भी नहीं भी होगी, क्योंकि अंतर पड़ता है ना बीच में। जो होई यानी यदि हो तो एक ही होगी या 2 होगी या 3 होगी, या उत्कृष्ट हो तो 4 होगी, इस तरह से मध्यम में तो हर एक समय में ऐसा घटित करना है। देखो जघन्य तो एक परमाणु अधिक ऐसी मध्य प्रत्येक वर्गणा, सो लोक विषय होई वा न होई, होई तो 1 हो, 2 हो, 3 हो, उत्कृष्ट अपने 4 हो। अभी ऐसे एक 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 परमाणु बढ़ाना, ये सारे मध्यम विकल्प है ना, तो इसे 1-4 तक उत्कृष्ट होते हैं, फिर और ऐसे बहुत बढ़ाते, बहुत बार बढ़ाया उन्होंने, तो जाके फिर 8 तक पहुंचे, यानी मध्यम भी कहीं 4 हो गए, कहीं 5 हो गए, कहीं 6 हो गए, कहीं 8 तक हमने देखा था, मध्यम मैक्सिमम पॉसिबल 8 था, और उत्कृष्ट में फिर दो भी घटाए थे। तो हमें जो ऐसा लगता है कि 14 ही जीवों पर घटा, ऐसी बात नहीं है। नहीं सर, मैं फिर डिटेल पढ़ूंगी तो आपको ख्याल में आए। देखो ये ढूंढारी में ही पढ़ती हूँ। देखो अभी हमने जघन्य पढ़ा, हो तो हो, नहीं भी हो तो एक भी हो सकती है, दो भी, तीन भी, चार भी। हाँ वही, अभी वही बता, आप ये सुनेंगे ना तो आपको ख्याल आएगा। अभी ये जघन्य की बात हुई, अभी किसी को एक परमाणु अधिक है तो ऐसी उत्कृष्ट परमाणु के ऐसी कितनी वर्गणाएं हो सकती है, एक भी, दो भी, तीन भी, चार भी। और एक परमाणु बढ़ गया उसमें भी कितनी हो सकती है, एक या दो या तीन या चार। देखो जघन्य की बात हमने पढ़ी ना, जघन्यते एक परमाणु अधिक ऐसी मध्य प्रत्येक वर्गणा, सो लोक विषय होई वा न होई, जो होई तो एक वा दो वा तीन वा उत्कृष्टपणे चार होई। ऐसे ही एक एक परमाणु का बधाव तई इसी अनुक्रम तई जब अनंत वर्गणा होई, अनंत वर्गणा तक मैक्सिमम पॉसिबिलिटी चार की है। जघन्य के बाद अनंत परमाणु बढ़ने तक चार है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, मैक्सिमम एट ए टाइम चार हो सकते हैं। तब ताके अनंतर उसके बाद यदि एक अधिक परमाणु होता है, अधिक वर्गणा, सो लोक विषय होई वा न होई, और जो होई तो एक वा दो वा तीन वा चार या उत्कृष्टपणे पांच होई। बीच में अनंत विकल्प है वो चार वाले ही देखें। अभी एक और परमाणु जब बढ़ गया अनंत के बाद, तब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी पांच की है, उसमें एक भी हो सकते पांच भी हो सकते। ऐसे एक एक परमाणु बढ़ते अनंत वर्गणा पर्यंत पांच ही उत्कृष्ट है। फिर अनंतर जो वर्गणा होई, यानी एक बढ़ने पर वो होगी या नहीं भी होगी, होगी तो एक भी होगी, दो भी होगी, तीन भी होगी, चार भी होगी, पांच भी होगी, छह भी होगी। अनंत बीच में विकल्प चले गए ना, तब जाके छह हो गई। यानी चार चार के भी बहुत सारे हो सकते हैं ना जी। वहां उत्कृष्ट संख्या बतलाई थी, मध्यम में भी उत्कृष्ट बतलाई, पर मध्यम वाले चार वाले, पांच वाले, छह वाले, सात वाले, आठ वाले, फिर उतरते हुए ऐसे भी होगी ना, यह वह मध्य बताए रहे। यानी वर्गणा की संख्या उत्कृष्ट कितनी हो सकती उसकी बात है। यानी हमने क्या खाली आठ लिए, खाली चार लिए और दो लिए, परंतु उसमें छह सात चार सब ले सकते हैं, और चार भी दो तीन बार भी ले सकते हैं। जघन्य चार, मध्यम भी अनंत विकल्प तक चार ही हो सकते हैं, आठ ही हो क्या, ऐसे नहीं है। मध्यम में उत्कृष्ट भी, मध्य मध्य में मैक्सिमम पॉसिबल, वो तो सेंटर वाले विशिष्ट वर्गणा का जो नंबर है उसके आठ है, परंतु वहां भी मध्यम सात वाले भी है, मध्यम छह वाले भी है, मध्यम पांच वाले भी है, मध्यम चार वाले भी है। देखो इसी अनुक्रम से अनंत अनंत वर्गणा पर्यंत उत्कृष्ट सात, फिर आठ, फिर टेपरिंग, यव मध्य तक गए ना मैक्सिमम पॉसिबल, उसके बाद अनंत विकल्प चले जाने पर फिर सात होगी, फिर अनंत विकल्प चले जाने पर छह, पांच, चार, तीन और दो तक, क्योंकि उत्कृष्ट के लिए हमने दो देखे थे, तभी 108 में इनको फिट करो। हाँ, अनंत अनंत है, क्योंकि जब पहले हमने स्टार्टिंग चार देखे थे जघन्य चार, तो चार चार वाले अनंत विकल्प है, उसके बाद पांच पांच वाले अनंत विकल्प, कल हम देख रहे थे ना जघन्य वर्गणा अयोगी में कितनी हो सकती है, प्रत्येक शरीर वर्गणा उसमें ये अयव मध्य होता है। यानी ये जो यव मध्य प्ररूपणा है ये मुक्तिगामी वो अयोगी वाले के उसकी अपेक्षा है, और वही बात उन्होंने क्षपक में शीन कषाय में भी देखी थी, बाद में बादर निगोद में। ये संसारी जीवों की ये यव मध्य रचना नहीं है, क्योंकि संसारी जीवों में तो प्रत्येक शरीर वर्गना बहुत ज्यादा है। कल अपने को जो प्रश्न था उसका ये उत्तर मिल गया। अभी हम यहाँ पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पृष्ठ संख्या 127 पर आ गए। 108 नंबर का सूत्र हम पढ़ने जा रहे हैं। ये प्रश्न अपना विषय ये चल रहा था कि जो वर्गणाएं हैं वो कैसे उत्पन्न होती है, भेद से होती है, संघात से होती है, भेद संघात से होती है। भेद यानी बड़े बड़े स्कंदों के भेद होकर छोटे स्कंद या परमाणु भी उत्पन्न हो गए। नीचे नीचे के छोटे स्कंद या परमाणुओं को जोड़ने से संघात से वो तो ऊपर वाले स्कंद उत्पन्न हो गए। और स्वस्थान में भेद संघात दोनों से जो उत्पन्न होते उसको स्वस्थान कहा। अब 108 नंबर का हम सूत्र पढ़ेंगे। क्या कहते हैं ये अभी स्वतंत्र है सूत्र, सांतर निरंतर की बात हो गई है अपनी। हाँ 108 है। अब ये तो सामान्य कथन है। उवरिल्लिणम दव्वाणम भेदेण हेठिल्लिणम दव्वाणम संघादेण सत्थानेण भेद संघादेण। ऊपर के द्रव्यों के भेद से, नीचे के द्रव्यों के संघात से और हुआ है, और स्वस्थान की अपेक्षा भेद संघात से होती है। कितनी ही सूत्र पोथियों में यह पाठ है, ये जो पाठ है वो अनेक पोथी कितने ही सूत्र कितने ही में है ऐसा कह। हाँ वही तो भेद से संघात से और भेद संघात से। इस सूत्र की व्याख्या करते समय जिस प्रकार ध्रुव स्कंद वर्गणा की तीन प्रकार से उत्पत्ति कही है उसी प्रकार यहाँ भी कहनी चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है। शंका। सचित्त वर्गणा या महास्कंद वर्गणा सांतर निरंतर वर्गणा रूप से कैसे परिणमन करती है? पहले में पहले बताया था कि जो सचित्त वर्गणा होती है वो अचित्त वर्गणा रूप से नहीं होती है। उसका समाधान नहीं, क्योंकि उनके भेद द्वारा आए हुए स्कंदों का सांतर निरंतर वर्गणा रूप से परिणमन पाया जाता है। भेद होने के बाद उसको सचित्त नहीं कहेंगे, तब उनको उससे हो सकता है। आप जो कहते हैं ना सांतर निरंतर में लगाना, तो ये जो कॉमन में सामान्य में जो सूत्र है वो सांतर निरंतर में भी एप्लीकेबल है, ये बात कहना चाहते हैं। कल जो हमने सांतर निरंतर की डिटेल बातें देखी थी, क्योंकि उन्होंने केवल भेद संघात से होता इतना ही प्रूव किया था, पर कितने ही सूत्रों में बताए वो भेद से भी संघात से भी और इस तरह से होता है, तो वो कैसे हो सकता है? तो भेद होने के बाद अभी वो सचित्त नहीं रहे, उस अपेक्षा से भी उसको ले लेते हैं। 109 नंबर का शांत निरंतर दव्यवगणानाम उवरी पत्यय शरीर दव्यवगणानाम किम भेदेन किम संघादेन किम भेद संघादेन। शांत निरंतर द्रव्य वर्गणाओं के ऊपर प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा क्या भेद से होती है, क्या संघात से होती है, या क्या भेद संघात से होती है? यह सूत्र सुगम है। तो कहते सत्थाने न भेद संघा देना, स्वस्थान की अपेक्षा भेद संघात से होती है। परमाणु वर्गणा से लेकर सांतर निरंतर उत्कृष्ट वर्गणा तक इन वर्गणाओं के समुदाय समागम से प्रत्येक शरीर वर्गणा नहीं उत्पन्न होती। ये नीचे की जो 15 वर्गणा है वो इकट्ठे आने से ऊपर की प्रत्येक शरीर वर्गणा नहीं होती, ये बताना चाहते हैं। क्योंकि उत्कृष्ट सांतर निरंतर वर्गणाओं का अपने स्वरूप को छोड़कर एक अधिक आदि उपरिम वर्गणा रूप से परिणमन करने की शक्ति का अभाव है, यानी स्वयं परिणमित होकर प्रत्येक शरीर वर्गणा हो जाए ऐसी बात नहीं है। शंका। आहार द्रव्य वर्गणा, तेजस द्रव्य वर्गणा और कारमान शरीर द्रव्य वर्गणा के पुद्गल स्कंधों के योग और कषाय के वश से प्रत्येक वर्गणा रूप से बंध को प्राप्त होने पर उनसे अन्य प्रत्येक शरीर वर्गणा की उत्पत्ति होती है। अतः नीचे के द्रव्यों के संघात से प्रत्येक शरीर वर्गणा की उत्पत्ति क्यों नहीं कही जाती? प्रश्न समझ में आया? देखो, नीचे की वर्गणा कौन कौन सी है जो जीव ने शरीर रूप से ग्रहण किए? आहार वर्गणा है, तेजस वर्गणा है, कर्माण वर्गणा है। और हम प्रत्येक शरीर वर्गणा किसको कहते हैं? कर्म और नौ कर्म के स्कंधों को। अभी वो कर्म रूप परिणमित हुए ना। आहार वर्गणा शरीर रूप से, आहार औदारिक शरीर रूप से परिणमित हुए। तेजस वर्गणा तेजस शरीर हुए। कर्माण वर्गणा कर्माण शरीर रूप से परिणमित हुए। और ये तीनों शरीरों का, ये सभी विश्रोपचय सहित वाला जो एक अखंड पिंड है, उसको हमने प्रत्येक शरीर वर्गणा कहा। तो उनसे तो उत्पन्न होती है, तो वे संघात से क्यों नहीं कहते? ये प्रश्न है। प्रश्न ख्याल में है ना? हमें भी ऐसे ही प्रश्न पड़ता है ना। अरे वो औदारिक तेजस कर्माण का जो मिला हुआ है, उसी को तो यहाँ प्रत्येक शरीर वर्गणा कहा, तो ये संघात से क्यों नहीं कहते? ये प्रश्न है। समाधान नहीं, क्योंकि प्रत्येक शरीर वर्गणा के समागम के बिना केवल नीचे की वर्गणाओं के समुदाय समागम से उत्पन्न होने वाली प्रत्येक शरीर वर्गणाएं नहीं उपलब्ध होती। दूसरी बात, योग के वश से यानी प्रत्येक शरीर वर्गणा के समागम से ही प्रत्येक शरीर वर्गणा उत्पन्न होगी, ये कहना चाहते हैं। क्योंकि वो आहार वर्गणा तेजस वर्गणा कर्माण वर्गणा तो सब जगह पड़ी है, अब यहां भी है, सब जगह है ना फैली हुई। वो जीव ने जब तक ग्रहण नहीं की है और जब कर्म नौ कर्म नहीं बने हैं उसके, तब तक हम उसको प्रत्येक शरीर वर्गणा या बादर निगोद वर्गण जो कुछ है वो नहीं कहेंगे ना। नया ग्रहण नहीं है, पहले है ही ना वहां पर, परंतु वो वर्गणा रूप है कि कर्म रूप है? देखो ये डिफरेंस समझ लेना। वर्गणा है वो रॉ मटेरियल है। कौन सा? आहार वर्गणा रॉ मटेरियल है, और फिर वो औदारिक शरीर रूप से पुंज रूप हो गए ना उसके। आहार वर्गणा जो औदारिक शरीर के शरीर रूप बन गया, पहले क्या था? वर्गणा, आहार वर्गणा थी, अब औदारिक शरीर बन गया। तो औदारिक शरीर तेजस शरीर और कर्माण शरीर, तीनों शरीर एक बंधन में बद्ध है। जीव ने योग के द्वारा उनको ग्रहण करके अभी वो एक बंधन में बद्ध है, तभी हम उसको शरीर वर्गणा कहेंगे। वो अभी बादर निगोद वर्गणा है कि प्रत्येक शरीर वर्गणा है, उसकी बात अभी अलग रखो हम। हाँ, पहले बारहवे तक उसको निगोद वर्गणा कहेंगे हम। वैसी बात नहीं है, ये क्या कहना चाहते हैं? अभी ये कोई स्पेस है तो उसमें आहार वर्गणा भी है, तेजस वर्गणा भी है, कर्माण वर्गणा भी है, प्रत्येक नहीं है। क्यों प्रत्येक नहीं है? उसको प्रत्येक नहीं कहते हम, वो तो अपने अपने रूप से ये वर्गणाएं पड़ी है। उसको तो हमने वो पहले लिए थे ना, अनंत वर्गणा के बाद आहार वर्गणा को लिया था। जीव जब उसको योग के द्वारा ग्रहण करता है और शरीर रूप परिणमाता है, तो योग के द्वारा उसने औदारिक के परमाणु भी लिए, तेजस के भी लिए, कर्माण के भी लिए, और उसको एक बंधन रूप से वो अभी जीव के साथ स्थित है। अब जो हमारी आपकी बात करेंगे तो वहां अकेले वो परमाणु नहीं है, वो तो बहादुर निगोद भी उसके आधार से रहते हैं। तो हमारे तेजस कर्माण और औदारिक के परमाणु नहीं है, वो निगोदों के भी वहां तेजस कर्माण सब एक बंधन बद्ध में है, इसलिए उसी को बादर निगोद वर्गणा कहा। जब क्षीण कषाय के बाद ये 13वें 14वें वाले की बात है, या अन्य जो स्थावर है वनस्पति को छोड़कर, तो वहां क्या है? प्रत्येक शरीर उनके आधार से बादर नहीं है, तो उसी को प्रत्येक शरीर वर्गणा कहने में आता है। जीव ने योगों के द्वारा ग्रहण करके उनको शरीर रूप से परिणमित किया है, तब उसको शरीर वर्गणा कहेंगे। पहले हम औदारिक वर्गणा कहे, आहार वर्गणा कहते थे, तेजस वर्गणा कहते थे, कार्माण वर्गणा कहते थे, शरीर नहीं कहते थे। ये थोड़ा डिफरेंस आपको ख्याल में नहीं आ रहा? देखो देखो देखो, वो बारहवें के अंत में है ना, पहले क्या कहते थे उसको, मादर निगोद वर्गणा कहते थे। हाँ स्कंद है, हाँ वर्गणा का है ऐसा मत कहो, शरीरों का कहो। हाँ तीनों शरीरों का स्कंद है, तेरवे में भी वही स्कंद है। प्रत्येक की रूप क्यों होता है, क्योंकि बादर ये निगोद निकल जाते हैं, इसलिए उसको प्रत्येक कहने में आता है। डिफरेंस क्या हुआ बारहवें के अंत में और तेरहवें में, डिफरेंस क्या हुआ? अभी निगोद नहीं रहा, तो एक बंधन में जो हमारे भी तेजस कारमान का बंधन था और वो निगोदों का भी था, सबका मिलकर एक बड़ा बंधन हुआ था, उसको बादर निगोद शरीर वर्गणा कहा था। अब वो निगोद के जीव वहां से चले गए। हाँ तो प्रत्येक शरीर स्कंद रह गया ना, अभी एक बंधन में बंधे हुए क्या है उस जीव का, यानी वो औदारिक शरीर है, तेजस शरीर है और कारमान शरीर है, एक बंधन में बंधे हुए इतने ही है। पहले निगोद भी वहीं पर रहते थे। नहीं, प्रत्येक शरीर वर्गणा को ग्रहण नहीं करता है जीव, ग्रहण तो आहार वर्गणा का, तेजस वर्गणा का और कारमान वर्गणा का करता है, और उसको योग के द्वारा ग्रहण करेगा और बंधन में बद्ध हुआ तब उसको हम प्रत्येक शरीर वर्गणा या जो कुछ कहना है वो कहेंगे। देखो यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ एक ही समय में है ना वो, लेशा से हम कहेंगे, लेशा में योग और कषाय दोनों आ गए। हाँ तो उसमें वो अनुभाग सहित ही हो जाता है ना।
हाँ
राग द्वेष भी है। हाँ देखो हम पहले पढ़ेंगे ना, तो मैंने इसलिए थोड़ा आपको समझाया कि क्या पढ़ना चाहते या जाने पढ़ने जाने वाले हैं। देखो समाधान क्या है, देखो फिर पढ़ते हैं। प्रत्येक शरीर वर्गणा के समागम के बिना केवल नीचे की वर्गणाओं के समुदाय समागम से उत्पन्न होने वाली प्रत्येक शरीर वर्गणाएं नहीं उपलब्ध होती। नीचे की वर्गणा इकट्ठी आई तो वहां प्रत्येक शरीर नहीं बनता है, ख्याल में आई ये बात? फिर और आगे पढ़ेंगे। दूसरी बात, योग के वश से, योग के कारण क्या होता है, एक बंधन बद्ध औदारिक तेजस और कार्मण परमाणु पुद्गल स्कंद अनंतानंत विश्रसोपचयों से उपचित होते हैं। एक बंधन में बंधे बनते हैं ना, परंतु वे सब शांत निरंतर आदि नीचे की वर्गणाओं में कहीं भी सदृश धन वाले नहीं होते हैं, यानी वो कहीं नीचे की वर्गणाओं के समान धन वाले समान संख्या में नहीं होते। जो हमने एक बंधन बद्ध है ना अभी, इसलिए परंतु वे सब नहीं, क्योंकि वे प्रत्येक वर्गणा के असंख्यातवे भाग प्रमाण होते हैं। प्रत्येक वर्गणा में कितने हैं परमाणु, अब ये नीचे के जो अलग अलग जो है वो उसके असंख्यातवे भाग प्रमाण ही पाए जाते हैं। वे प्रत्येक शरीर जघन्य वर्गणा के सदृश भी नहीं होते, क्योंकि वे उसके असंख्यातवे भाग प्रमाण होते। नीचे जो अलग अलग जो हमने देखे थे औदारिक तेजस और कारमान की जो नीचे की वर्गणाएं या अन्य भी निरंतर सांतर निरंतर तक की वर्गणाएं मिलकर प्रत्येक शरीर वर्गणा तैयार नहीं होती है, क्योंकि वे उसके असंख्यातवे भाग प्रमाण रह जाती है, जघन्य के भी असंख्यातवे भाग। वे अलग रूप से वर्गणा संज्ञा को भी नहीं प्राप्त होते, क्योंकि जीव से अलग होने के काल में उनका एक बंधन नहीं होता, देखो ये पूरे ही विश्व में लोकाकाश में ये सभी वर्गणाएं पड़ी है, पुद्गल है वे। जब जीव उनको ग्रहण करता है तब वे एक बंधन में बद्ध है और फिर उसको प्रत्येक शरीर वर्गणा ऐसा नाम देने में आएगा। अभी हम आप क्षीण कषाय की बात अलग रखो, एक पृथ्वी कायिक ले लो। पृथ्वी कायिक जीव ग्रहण कर रहे हैं ना, क्या क्या ग्रहण करता है? आहार वर्गणा यानी औदारिक शरीर के परमाणु, तेजस शरीर के परमाणु और कारमान शरीर के परमाणु का, यानी वो उसको हम वर्गणा कहेंगे। आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा और कारमान वर्गणा को ग्रहण करता है। तो ये पड़ी थी तभी तो ग्रहण किया ना, तो वो पड़ी थी वहीं पर, उसको क्यों नहीं कहा प्रत्येक शरीर? हाँ, योग के कारण उसका बंधन हुआ, वो शरीर रूप से परिणमित हुई है। बारहवें की आप अभी बात ही मत करो, आप समझो पहले। आप पृथ्वी कायिक ले लो, अग्नि कायिक ले लो, जल कायिक ले लो, वो जीव भी आहार वर्गणा को ग्रहण किया। तेजस ग्रहण नहीं करता है, जब ग्रहण किया था तो वो वर्गणाएं अलग अलग थी। हाँ, ये उसने उसमें से ग्रहण किए, मान लेते विश्वसोपचय में से किए, बाहर कहीं से भी किया, एटमोस्फियर में से। तो ग्रहण करने के बाद वो एक बंधन में बंधी, तीनों के शरीर हो गए। पहले क्या था? कारमान वर्गणा थी, अब कर्म शरीर हुआ, कर्म बना ना उसका, और वो तेजस और औदारिक के साथ जुड़ गया, सबका मिलकर एक लड्डू हो गया वहां पर, पिंड हो गया। तब उसको हम प्रत्येक शरीर वर्गणा कहेंगे। उसने प्रत्येक शरीर वर्गणा की ऐसी ग्रहण नहीं की है। प्रत्येक शरीर वर्गणा वो तो उसको सचित्त क्यों कहा? वो तो जीव ने ग्रहण करने के बाद उसको प्रत्येक शरीर वर्गणा कहा हमने, इसलिए उसको सचित्त वर्गणा कहा। ये प्रत्येक शरीर वर्गणा है, बादर निगोद वर्गणा है और सूक्ष्म निगोद वर्गणा, ये सचित्त वर्गणाएं हैं। जीव के एक बंधन में बंधे हुए शरीर को वो संज्ञा दी है, फिर उसके साथ उसके विसृसोपचय भी आ गए। अश्विन भाई को अभी थोड़ा कंफ्यूजन है। ऐसे है ना, अभी खाली मिक्स करो तो उसको लड्डू नहीं कहलाएंगे। जो चीजें हमें लड्डू बनाने के लिए चाहिए थे हमने इकट्ठे कटोरी में ले लिए, तो आप कहें तो वही बाहर ही मिला दो ना उसको, तो हमने वो शक्कर और पानी और वो आटा सब मिला दिया जो कुछ तो। हाँ, नहीं उसको लड्डू के रूप में तो नहीं होगा, वर्गण अपन उसको प्रत्येक शरीर वर्गणा नहीं कहा। नहीं, उनको ऐसा लगता है कि प्रत्येक शरीर वर्गणा ग्रहण की, प्रत्येक शरीर वर्गणा नहीं ग्रहण की। ग्रहण होने के बाद प्रत्येक शरीर वर्गणा का। हाँ, अभी बारहवें गुण स्थान में। अंत समय में देखिए आप क्या कंफ्यूजन, फिर वही है। अभी वो जीव ने जो ग्रहण किया था, हम आपकी बात करेंगे। बारहवें गुणस्थान वाले की बात करें कि केवली की? अच्छा, देखो बारहवें के अंत समय में बात करेंगे। बारहवें में कौन आया है? मुनिराज। मुनिराज ने पहले से युद्ध, क्योंकि वो तो बादर शरीर, सॉरी बादर निगोद से प्रतिष्ठित ही था जन्म से ही लेकर, बराबर है ना? तो वो बारहवें गुणस्थान में क्या स्पेशलिटी होगी? तो वहां तो निगोद उत्पन्न होना क्रम से रुकता गया। उसने तो वर्गणाएं तो वही ग्रहण की थी, औदारिक, तेजस और कारमान, और सबका एक बंधन था, परंतु अकेले सेपरेट नहीं था, क्योंकि उसी के साथ निगोद भी था ना, निगोद युक्त ही था वो पहले ही से। निगोद युक्त होने के कारण बस उसको हम प्रत्यक्ष शरीर नहीं कह पाते थे। अब वही शरीर जो औदारिक, तेजस और कारमान जो बचा, निगोद निकल गए तो निगोद निकल गए तो अपने अपने तेजस कारमान को लेके गए, बराबर है ना। तो अभी जो बचा वो तो प्योर प्रत्यक्ष शरीर बचा, बचा वो नया नहीं, निर्माण नहीं हुआ है। हाँ देखो, प्रत्येक शरीर नाम कर्म के कारण क्या होता है, वो एक जीव और एक उसका शरीर, ये स्वामी एक जीव कहलाता है, परंतु उसी प्रत्येक शरीर के आधार से अनंत बादर निगोद भी रहते हैं, उसी प्रत्येक शरीर के आधार से, उसके आधार से कहा, उसको प्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। और जब केवली में क्या होता है, अप्रतिष्ठित हो जाता है, हाँ तेजस कारमा निकल, अब प्योर प्रत्येक शरीर बच गया, यानी वो नया कुछ ग्रहण करता है ऐसी बात नहीं है, पुराने ही जो बादर के साथ था, बादर निकल गया, उसी को प्रत्येक कहा, ख्याल है ना, बिल्कुल मांस, मांस का जो दोष जो है ना, और वनस्पति में भी जो प्रतिष्ठित, हाँ वनस्पति में भी प्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। हाँ, केवली होने के बाद भी औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कारमान शरीर का ग्रहण चालू है कि नहीं चालू, ऐसा मत कहो। हाँ कंफ्यूजन वहीं पर हो रहा है, ख्याल है ना, इसीलिए कहते वो तो सचित्त का ग्रहण नहीं हो रहा है, जब योग से ग्रहण करता है तब वो सचित्त हो गई वर्गणा। भोजन हम ग्रहण किया, भोजन जब शरीर रूप से परिणमित हुआ तब हम उसको शरीर कहेंगे, और तब हम वो तो जीव सहित वाला कहेंगे, ऐसा है ना। तो शरीर को भी सजीव कहते ना, जैसे हम सचित्त के बदले सजीव, सजीव किसको कहते, ये भी पुद्गल है, ये जो रूल है, ये प्लास्टिक है, ये भी पुद्गल है, और शरीर भी पुद्गल है, फिर इसको जीव क्यों नहीं कहते, इसको सजीव क्यों नहीं कहते। तो जितना ये अचेतन है उतना ही शरीर भी अचेतन है, फिर भी जीव ने ग्रहण किया है और जीव के साथ अभी है वो, तो हम उसको भी सजीव कहते हैं, वो ये उपचार, इसको उपचार कहेंगे, ख्याल है ना। देखो चलो, ये अपना भी पक्का हो गया। हाँ अभी मैं ये फिर पढ़ती हूँ, समाधान 128 पृष्ठ पर नीचे का समाधान देखो। प्रत्येक शरीर वर्गणा के समागम के बिना केवल नीचे की वर्गणाओं के समुदाय समागम से उत्पन्न होने वाली प्रत्येक शरीर वर्गणाएं नहीं उपलब्ध होती। तो प्रत्येक शरीर वर्गणा का समागम कैसा हुआ, अभी हम पृथ्वी काय है कोई, उसके पास प्रत्येक शरीर ऑलरेडी है, और उसने नया ग्रहण करके उसको भी प्रत्येक शरीर बनाया, और उसका समागम होकर और एक बड़ा पिंड हो गया। दूसरी बात, या ऐसा ले सकते, अग्नि का एक जीव है, इतने असंख्यातों का एक समुदाय हो जाता है, तो प्रत्येक शरीरों का समुदाय हुआ, वहां भी ले सकते हैं। दूसरी बात, योग के वश से एक बंधनबद्ध औदारिक तेजस और कारमण परमाणु पुद्गल स्कंध अनंतानंत विश्रसोपचयों से उपचित होते हैं, विसरसो चाहिए, विसरसरो हुआ है। मैं तीन बार पढ़ा मगर कुछ तो गलत है ऐसा लगता था। हाँ, यानी हर एक के अपने अपने अनंत अनंत विसरसोपचय है। अब परंतु वे सब शांत निरंतर आदि नीचे की वर्गणायों में कहीं भी सदृश धन वाले नहीं होते। इनकी जो संख्या है वो नीचे की किसी भी वर्गणा के साथ सिमिलर इनकी संख्या नहीं है, क्योंकि वे प्रत्येक वर्गणा के असंख्यातवे भाग प्रमाण होते हैं। स के ऊपर बिंदी लगा। वे प्रत्येक शरीर देखो, समय प्रबद्ध तो एक समय की बात है और यहाँ तो ऑलरेडी प्रत्येक शरीर वर्गणा कहाँ ग्रहण करते हैं? प्रत्येक समय में तो तेजस वर्गणा और कारमान वर्गणा ग्रहण, हाँ, मगर ग्रहण करने के बाद प्रत्येक शरीर होगा और ऑलरेडी उसके पास विग्रह गति में भी तेजस और कारमान का तो पुंज था ही, चार पुंज तो उसके पास थे ही थे। यानी अकेले समय प्रबद्ध इतना ही उसका नहीं हुआ है। वे प्रत्येक शरीर जघन्य वर्गणा के सदृश भी नहीं होते, क्योंकि वे उसके असंख्यात विभाग प्रमाण होते हैं। वे अलग रूप से वर्गणा संज्ञा को भी प्राप्त नहीं होते, क्योंकि जीव से अलग होने के काल में उनका एक बंधन नहीं होता। ये एक बंधन में बंधन नहीं है। जीव के साथ जब जीव योग के द्वारा ग्रहण करता है, जब तक जीव के साथ वो बने हैं तब तक उसको प्रत्येक शरीर वर्गणा कहेंगे। जीव ने छोड़ दिए, हाँ, तो नहीं कहेंगे। और मरण होने के बाद वो तेजस कारमान सहित निकल गया है। हाँ वो जड़ हो गया, वो तो प्रत्येक शरीर नहीं कहलाएगा अभी। इसलिए नीचे की वर्गणाओं के संघात से प्रत्येक शरीर वर्गणा नहीं उत्पन्न होती, यह सिद्ध हुआ। ये बात यहां उनको सिद्ध करनी थी। ऊपर के द्रव्यों के भेद के बिना प्रत्येक शरीर वर्गणा उत्पन्न होती है, यानी नीचे के संघात से नहीं होती, ये बात सिद्ध की। फिर कहते ऊपर के भेद के बिना ही उत्पन्न होती है, क्योंकि बादर निगोद वर्गणा और सूक्ष्म निगोद वर्गणा के औदारिक तेजस और कार्मण वर्गणा स्कंधों के अधस्थिति गलना के द्वारा गलित होने पर प्रत्येक शरीर वर्गणा को उल्लंघन कर, ल के ऊपर बिंदी लगाना, उनका नीचे सदृश धनरूप शांत निरंतर आदि वर्गणा रूप से अवस्थान उपलब्ध होता है। क्या कहते हैं? अधोगलन, अधस्थिति गलन, यानी नीचे के निषेकों का खिर जाना। कौन से ऊपर की वर्गना? बादर निगोद वर्गना है और सूक्ष्म निगोद वर्गना। उनके भी वो छः छः पुंज है औदारिक तेजस कारमान। अभी उनमें से भी परमाणु निकल जाते हैं। एक समय प्रबद्ध निकला ना, तो एक समय प्रबद्ध जो निकलेंगे वो परमाणु डायरेक्ट कैसे होते हैं? शांतर निरंतर आदि वर्गना रूप से पाई जाती है। आदि में उसके नीचे के लेना, आहार वर्गणा होगी, तेजस वर्गणा होगी, कारमान वर्गणा होगी, या शांत निरंतर वर्गणा भी हो सकेगी उसकी। डिपेंड्स कि कितने परमाणु का वो समूह है, उस रूप हो जाएगी वो। प्रत्येक शरीर को उल्लंघन कर नीचे की हो जाती है। हाँ, यानी प्रत्येक शरीर वर्गणा इतने परमाणु का पुंज नहीं होता, वो छोटे छोटे होते हैं। उसके विशिष्ट रेंज है ना, प्रत्येक शरीर वर्गणा की रेंज है इतने परमाणु से इतने परमाणु तक, तो उतने उसके जो अधस्थिति गलन से जो निकलते हैं वो उतने नहीं होते, उसको उल्लंघन कर नीचे वाले स्कंद हो जाते हैं। शंका,
प्रत्येक शरीर का गलन हो गया वो तो होता ही नहीं, मना कर
बादर और उसमें से, हाँ, यानी उसमें गलने से प्रत्येक शरीर होता है ये बात नहीं है। हाँ,
अब जो प्रत्येक शरीर के गलन नहीं होता,
प्रत्येक शरीर का भी होगा
तो उसका क्या होगा?
तो वो ऐसे आहार वर्गना, तेजस वर्गना, कारमण वर्गना होगी, उसके भी होगे। हाँ, परंतु प्रत्येक शरीर से वो विषय अपने अभी नहीं चल रहा है। हाँ, अभी विषय क्या है, प्रत्येक शरीर कैसे बनता है, क्या संघात से होता है क्या भेद से होता है। हाँ, उसकी कोई ऐसी, वो सचित्त ही है। हाँ हाँ, वो गल गया, जो गल गया तब वो उसको बादर निगोद रूप से नहीं है, वो उसको बादर, वो अचित्त हो गई। हाँ, उसकी संख्या एकदम नीचे वाले की समान हो जाती है, उसकी रेंज कौन, क्योंकि हमने एक एक परमाणु से बढ़ते हुए ये सारी संख्या देखी, एक श्रेणी में देखी ना 23 वर्गणा, 23 वर्गणाओं का विशिष्ट रेंज देखी हर एक की अपनी अपनी, तो ये प्रत्येक शरीर वाले जो रेंज है उसको उल्लंघन कर नीचे के समान हो जाते हैं। शंका, यह किस प्रमाण से जाना जाता है, उसका समाधान, स्वस्थान की अपेक्षा भेद संघात से ही प्रत्येक शरीर वर्गणा होती है, यह सूत्र अन्यथा नहीं बन सकता, इससे जाना जाता है। शंका, भेद को प्राप्त होने के दूसरे समय में प्रत्येक शरीर वर्गणा रूप से उनका परिणमन होता है, इसलिए उपरिम द्रव्यों के भेद से प्रत्येक शरीर वर्गणा की वर्गणा की उत्पत्ति क्यों नहीं कहते हैं? क्या कहते हैं, ऊपर की वर्गणाओं का भेद हुआ ना, अब वो जब क्या कहा, बादर निगोद वर्गणा थी, अधस्थिति गलन हुआ, वो नीचे की वर्गणा बनी, आहार वर्गणा बनी, उसकी तेजस वर्गणा बनी, और उसको फिर ग्रहण किया तो वो प्रत्येक शरीर वर्गणा हुई। तो इसलिए वो कहते हैं कि भेद, पहले समय भेद हुआ, दूसरे समय प्रत्येक शरीर रूप हुआ, तो ये भेद से उनकी उत्पत्ति होती है, ऐसा क्यों नहीं कहते हैं? समाधान, नहीं, क्योंकि उपरी वर्गणा से आए हुए परमाणु पुद्गलों से ही प्रत्येक शरीर वर्गणा की निष्पत्ति का अभाव है, यानी वहीं से आए हुए परमाणु से इसकी उत्पत्ति होती है, ऐसा मानना नहीं होता। फिर शंका, बादर निगोद वर्गणा से और सूक्ष्म निगोद वर्गणा से एक जीव के प्रत्येक शरीर वालों में उत्पन्न होने पर ऊपर के द्रव्यों के भेद से प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा की उत्पत्ति क्यों नहीं कहते? समझ में है प्रश्न? बादर निगोद वर्गणा वाला कोई जीव है, हाँ, और सूक्ष्म निगोद वर्गणा वाला जो है, और वो प्रत्येक शरीर में उत्पन्न हुआ, अग्नि का एक हुआ, पृथ्वी का एक हुआ, देव में गया, नारकी में गया, तो कहते हैं ऊपर के द्रव्यों के भेद से प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा की उत्पत्ति उसको क्यों नहीं कहती है? उसका समाधान, नहीं, क्योंकि ऊपर की वर्गणाओं के भेद का नाम ही विनाश है, और बादर निगोद वर्गणा तथा सूक्ष्म निगोद वर्गणा में से एक वर्गणा नष्ट होती हुई प्रत्येक शरीर वर्गणा रूप से नहीं परिणमती, क्योंकि ऐसा होने पर प्रत्येक शरीर वर्गणाएं अनंत हो जाएगी। उसका भेद होना, उसका नाम कहते हैं विनाश होना, और ये उसका विनाश होकर प्रत्येक शरीर रूप से परिणमित हो गए तो वो तो अनंत है, तो ये भी अनंत हो जाएगी, ऐसा उनका कहना है। यदि कहा जाए कि असंख्यात लोक प्रमाण जीवों के द्वारा एक बादर निगोद वर्गणा या सूक्ष्म निगोद वर्गणा उत्पन्न होती है, सो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रकार उन वर्गणाओं के अनंत होने का प्रसंग आता है। हमने हर एक वर्गणा की लिमिट देखी ना, कितनी हो सकती है, उसके बाद हमने देखी थी, तथा अलग हुए एक जीव के बादर निगोद वर्गणा के और सूक्ष्म निगोद वर्गणा के अनंत वे भाग प्रमाण द्रव्य का उस रूप से भेद भी नहीं बन सकता, यानी वो बादर निगोद वर्गणा और सूक्ष्म निगोद वर्गणा का भेद होकर प्रत्येक शरीर वर्गणा होती है, इस बात का वो निषेध कर रहे हैं। अब कहते हैं, यदि कहा जाए महास्कंद वर्गणा नष्ट होती हुई प्रत्येक शरीर वर्गणा रूप से परिणमन करती है, सो यह कहना भी ठीक नहीं है। महास्कंद में से बनती है ऐसा कहो तो वो भी नहीं बनता, क्योंकि एक तो उसका सर्वकाल विनाश नहीं होता, यानी महास्कंद का विनाश हो जाए तो ऐसे नहीं होता। दूसरे, ऐसा मानने पर प्रत्येक शरीर वर्गणा के अनंत होने का प्रसंग आता है, उसमें से ये मिल बन जाए तो महास्कंद में से कितनी बनेगी तो ये अनंत हो जाएगी। और तीसरे, अचेतन का सचेतन रूप से परिणमन होने में विरोध है। महास्कंद जो वर्गणा है वो अचेतन वर्गणा है और प्रत्येक शरीर वर्गणा वो सचेतन वर्गणा है, सचित्त वर्गणा है। हमने देखा जीव उसको योग के द्वारा ग्रहण कर के बाद में उसको हम प्रत्येक शरीर वर्गणा कहते, इसलिए प्रत्येक शरीर वर्गणा ऊपरी वर्गणाओं के भेद या संघात से नहीं उत्पन्न होती, यह सिद्ध हुआ। उनको सिद्ध क्या करना है, प्रत्येक शरीर वर्गणा कैसे उत्पन्न होती है, तो ऊपर के वर्गणाओं के भेद से नहीं होती। उसके ऊपर में कौन कौन सी है, तो बादर निगोद वर्गणा है, सूक्ष्म निगोद वर्गणा है, महास्कंद वर्गणा है।
तो सचित वर्गणा तीन ही हुई,
सचित तीन ही है,
तीन
हाँ। आहार वर्गणा तेजस वर्गणा जीव ग्रहण करता है, तो ग्रहण करने के बाद उसको सचित कहेंगे। क्या ना, पहले जो कन्फ्यूजन हो रहा था, ग्रहण करता है तब उसको प्रत्येक शरीर वर्गणा नहीं कहा, ग्रहण तो उसने अचित को किया और ग्रहण करने के बाद उसी को सचित कहने में आया। हाँ देखो, आप सचित अचित के बारे में जानना चाहते, सचित कहो या सजीव कहेंगे अभी हम अपनी रेगुलर भाषा में, जीव ने, तो जीव के संयोग में जो है वो सचित है, और जो बाकी जो है वो अचित है। तो जीव योग के द्वारा ग्रहण करता है और वो जीव की सत्ता में है तब उसको सचित कहेंगे। राग को यहाँ इसलिए नहीं लिया क्योंकि केवली भी ले रहे ना, योग के द्वारा उनका ग्रहण चल रहा है, वहाँ तेजस कारमान और औदारिक का भी ग्रहण हो रहा है 13वें गुण स्थान में, तो उस वर्गणा को भी सचित कहेंगे हम। छूट जाने के बाद अचित हो गई तीन है, प्रत्येक शरीर वर्गणा, बादर निगोद वर्गणा और सूक्ष्म निगोद वर्गणा, तीनों ही सचित है। देखो प्रत्येक शरीर वर्गणा किसमें देखे, वो आठ जहां जिसके आधार से निगोद नहीं रहते ऐसे शरीर वाले जीवों के वो होती है। मादर निगोद वर्गणा प्रतिष्ठित प्रत्येक जो जीव है उनके होती है, और सूक्ष्म निगोद वर्गणा सूक्ष्म जीवों के होती है। फिर भी वो महामत्स्य वगैरह को भी वो सूक्ष्म निगोद वर्गणा कही, क्यों, उसमें ही पाए जाते, छह जीव निकाय वहां पाए जाते इकट्ठे, उस अपेक्षा उसको भी सूक्ष्म निगोद वर्गणा कही है। उसके तो मादर निगोद वर्गणा भी है उसके शरीर के आधार से रहने वाले, परंतु अभी उसी बंधन में बद्ध ऐसे वहां सूक्ष्म निगोद भी पाए जाते उतने ही क्षेत्र में, इसलिए वहां सूक्ष्म निगोद वर्गणा को भी लिया महामत्स्य में। हाँ, जीव के बंधने के बाद जो हो गए, हाँ जब छूट जाते हैं जीव, जब वो कर्म जो अभी हमारा जो कर्म कहलाता है, हम कहते कर्म का उदय हुआ तो क्या हुआ, कारमाण वर्गणा हो गई ना, पहले क्या कहलाती थी, बादर निगोद वर्गणा के, प्रत्येक शरीर वर्गणा के भी ऊपर का स्टेज थी उसकी संख्या में। अभी उसी परमाणुओं को क्या कहेंगे, कारमाण वर्गणा कहेंगे। उसने इतने सारे बीच वाले वर्गणा को लांग कर नीचे आ गए वो, या दूसरी भी बात है ना, सांतर निरंतर रूप से भी उसका परिणामन होगा। अभी हमने देखा था, और फिर उसमें भी परमाणु परमाणु भी छूटे, उससे भी नीचे वाली वर्गणा हो जाए, असंख्यात अनुवर्गणा हो के संख्यात अनुवर्गणा हो जाए उसमें से ही। उसमें से प्रत्येक परमाणु अपनी योग्यता से परिणमन करता है, तो वो अन्य अन्य वर्गणा रूप हो सकता है। इस पैराग्राफ के नीचे से तीसरी लाइन, किंतु, वो कित्तु दिख रहा है, किंतु करना उसको, न लगाना, न और तो, किंतु स्वस्थान की अपेक्षा भेद संघात से उत्पन्न होती है। ये प्रत्येक शरीर वर्गणा के कंक्लूजन क्या हुआ? भेद संघात से उत्पन्न होती है, क्योंकि प्रत्येक वर्गणा के अवांतर भेद रूप वर्गणाओं के समुदाय समागम या असमागम से वर्गणा की उत्पत्ति देखी जाती है। क्या कहना चाहते हैं? अवांतर भेद यानी क्या है? जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक जो भेद है, प्रत्येक शरीर वर्गणा ही है, उनके समागम से हो सकता है। जैसे अनेक अग्नि का एक जीव इकट्ठे आए तो उनके समागम से एक प्रत्येक शरीर वर्गणा बनी बड़ी। छोटे छोटे अनेक थे ना, तो उसके मिलकर वो एक बड़ी बनी। अब 111 भेद संघात, भेद और संघात दोनों लेना, यानी बहुत बीच में अंतर नहीं लेना, भेद हुआ और संघात हुआ ऐसा। हाँ, या भेद संघात होना उसी को स्वस्थान कहा। उन्होंने दोनों पद्धति से भेद संघात की डेफिनेशन की। दो डेफिनेशन देखी ना हमने। कल पढ़ा था हमने। मिला ना आपको? हाँ, चलो अभी हम आगे पढ़ेंगे। प्रत्येक शरीर वर्गणा तक देखा, हर एक वर्गणा कैसे तैयार होती है उसको हम देख रहे हैं। अब प्रत्येक शरीर वर्गणाएं उवरी बादर निगोद दव्य वर्गणा नाम किम भेदेन किम संघादेन किम भेद संघादेन। प्रत्येक शरीर वर्गणा के ऊपर बादर निगोद वर्गणा क्या भेद से होती है, क्या संघात से होती है, या क्या भेद संघात से होती है, यह सूत्र सुगम है। सत्थानेन भेद संघादेन, स्वस्थान की अपेक्षा भेद संघात से होती है। नीचे की वर्गणाओं के संघात से तो बादर निगोद वर्गणा उत्पन्न होती नहीं, क्योंकि अचेतन वर्गणाओं के समुदाय समागम से सचेतन वर्गणाओं की उत्पत्ति होने में विरोध है। ये मात्र ये बहुत सारी अचेतन वर्गणा इकट्ठी आए और सचेतन हो जाए ऐसी बात नहीं है। तो बीच में वो जीव ग्रहण करता है ना उसको, तब उसको सचित कहने में आता है। तथा असंख्यात लोक प्रमाण प्रत्येक शरीर वर्गणाओं के समुदाय समागम से अनंत जीव गर्भ एक बादर निगोद वर्गणा की उत्पत्ति होने में विरोध है। बादर निगोद वर्गणा को क्या कहा? अनंत जीव गर्भ। अनंत जीव उत्पन्न होते ना उसमें, अनंत जीव गभ्भे। यह कहना उपरिम सचित्त वर्गणा के भेद से यह वर्गणा होती है ठीक नहीं है। क्या कहते हैं? इसके ऊपर सचित्त वर्गणा कौन सी है? सूक्ष्म निगोद वर्गणा, उसके भेद से यह होती होगी कहना भी ठीक नहीं है। पहले क्या कहा? प्रत्येक शरीर के संघात से होती, ये कहना भी ठीक नहीं है। और वो सूक्ष्म निगोद वर्गणा के भेद से होती, ये कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक सूक्ष्म निगोद वर्गणा के सब जीवों का युगपत बादर निगोद वर्गणा रूप से परिणमन होने में विरोध है। सूक्ष्म निगोद वर्गणा में जितने जीव है वो एक साथ बादर वर्गणा निगोद वर्गणा रूप के जीव बन जावे ऐसी बात नहीं होती। तथा जो जीव सूक्ष्म निगोदों में से आकर बादर निगोदों में उत्पन्न होते हैं, उनके द्वारा आरंभ की गई बादर निगोद वर्गणा का अभाव है। शंका, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? उसका समाधान, उपरी वर्गणाओं के भेद से नहीं होती इस वचन से जाना जाता है। अब महास्कंद द्रव्य वर्गणा के भेद से बादर निगोद वर्गणा नहीं उत्पन्न होती, ऊपर की वर्गणाओं से होती है कि नहीं, ये प्रश्न चल रहा है। बादर निगोद वर्गणा के बारे में हम सोच रहे हैं, सूक्ष्म निगोद वर्गणा से नहीं होता ये सिद्ध कर दिया। अब ऊपर महास्कंद भी तो है ना, तो उसके भेद से होता होगा। तो कहते हैं महास्कंद द्रव्य वर्गणा के भेद से बादर निगोद वर्गणा नहीं उत्पन्न होती, क्योंकि एक तो उसका विनाश नहीं होता, किसका महास्कंद वो फूट जाए टूट जाए उसमें बारीक छोटी छोटी वर्गणाएं, ऐसा नहीं होता, उसका विनाश नहीं होता। दूसरे अचित्त का सचित्त रूप से परिणमन होने में विरोध है, इसलिए स्वस्थान की अपेक्षा भेद संघात से ही बादर निगोद वर्गणा होती है। जैसे प्रत्येक शरीर में घटित किया वैसे बादर निगोद में भी घटित करना है। हाँ, तो वो छोटी बड़ी होती रहते वो महास्कंद ही रहेगी, उसमें परमाणुओं की संख्या बदलती रहेगी, परमाणु अन्य अन्य आके मिलेंगे, दूसरे दूसरे चले जाएंगे, परंतु वो तो महास्कंद ही रहेगी, हर समय उसको महास्कंद ऐसे ही संज्ञा पाई जाएगी। यानी कभी महास्कंद नहीं है कुछ काल के लिए, ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, और वो भी एक ही होगी, ऐसा भी नहीं कि दो तीन होती है उसमें से एकाध नष्ट हो जाए, ऐसी भी नहीं बात, एक महास्कंद तो हमेशा ही हो, उसमें परमाणुओं का वेरिएशन होता है। परंतु वो टूट जाए और नीचे की वर्गणा बन जाए, ऐसी नहीं होती। परंतु वो तो महास्कंद रूप से नहीं रही ना अभी। हाँ, उसको हम नीचे की, और यहाँ तो ये सचित्त वर्गणा होने की बात है, वो अचित्त है, ये सचित्त रूप से नहीं हो सकती। देखा हमने, देखा ना, अचित का सचित रूप से परिणाम होने में, इसलिए स्वस्थान की अपेक्षा भेद संघात से ही बादर निगोद वर्गणा होती है। सूक्ष्म निगोद में से या प्रत्येक शरीर में से आए हुए जीवों के द्वारा और बादर निगोद जीवों के द्वारा एक एक बादर निगोद वर्गणा निष्पन्न की जाती है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। ये बादर निगोद वर्गणा काहे से उत्पन्न होती है? बादर निगोद जीवों के द्वारा। तो वो जीव काहे से, कहाँ से आए हुए? प्रत्येक शरीर वर्गणा में से आए हुए या सूक्ष्म निगोद में से आए हुए? प्रत्येक शरीर वाले जीव हो या सूक्ष्म जीव हो, उसमें से मरकर यहाँ पर आ गए हैं, या जो बादर निगोद ही है वो जो उत्पन्न करते हैं वहाँ पर, उसकी बात है। शंका, यतः बादर निगोदों से सूक्ष्म निगोद असंख्यात लोग गुणे हैं, अतः एक बादर निगोद वर्गणा शुद्ध सूक्ष्म निगोदों से आरंभ होती है, यदि ऐसा कहा जाए तो क्या दोष है? समझ नहीं, क्योंकि एक सूक्ष्म निगोद वर्गणा में स्थित जीवों के अनंतवे भाग मात्र जीवों का ही बादर निगोदों में संचार देखा जाता है। अतः एक सूक्ष्म निगोद वर्गणा से एक बादर निगोद वर्गणा का आरंभ नहीं हो सकता। बादर निगोद में भी अनंत जीव है ना, और वो कहते हैं सूक्ष्म निगोद वर्गणा से उसका आरंभ होता है ऐसा मानो, तो ऐसा नहीं हो सकता, उसके अनंत विभाग ही बादर निगोद में आते हैं। 113 बादर निगोद दवगण, हाँ, जीव तो ज्यादा है परंतु उसका नाश कौन करेगा? दूसरा कोई उसका नाश ही नहीं कर सकता, क्योंकि हाँ अप्रतिघात है, तो उसके नाश दूसरे के मारने से क्या, जल में गलाने से या अग्नि से, ऐसे तो जल भी नहीं सकते हैं। हाँ, प्रतिघात युक्त है ही नहीं हुए। देखो ये क्या कहते हैं, हाँ आगे का सूत्र हम पढ़ने जा रहे हैं। बादर निगोद दव्व वग्ग वह रह गया, बादर निगोद दव्व वग्गणानम उवरी। 113वें सूत्र में एक व शब्द डालना बीच में, वग्गणानम उवरी। सुहम निगोद दव्व वग्गणानाम किम भेदेन किम संघादेन किम भेद संघादेन। पहले हमने प्रत्येक शरीर वर्गणा देखी, बादर निगोद वर्गणा देखी, ये दोनों ही सचित्त है और वो भेद संगात से उत्पन्न होती है। अब सूक्ष्म निगोद की बात करेंगे। बादर निगोद द्रव्य वर्गणाओं के ऊपर सूक्ष्म निगोद द्रव्य वर्गणा क्या भेद से होती है, क्या संघात से होती है, या क्या भेद संघात से होती है, यह सूत्र सुगम है। कहते सत्थाने न भेद संघा देना, स्वस्थान की अपेक्षा भेद संघात से होती है। बादर निगोद वर्गणाओं के संघात से एक सूक्ष्म निगोद वर्गणा नहीं होती। अनेक बादर निगोद वर्गणाएं मिलकर एक सूक्ष्म निगोद वर्गणा बन जाए कि वो ऊपर वाली है ना, उसमें संख्या ज्यादा है परमाणुओं के, क्योंकि एक सूक्ष्म निगोद वर्गणा में जितने जीव है उतने बादर निगोद जीवों के द्वारा आरंभ की गई सूक्ष्म निगोद वर्गणा का अभाव है। शंका, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? उसका समाधान, नीचे की वर्गणाओं के संघात से नहीं होती इस वचन से जाना जाता है। अथवा बादर निगोदों का सूक्ष्म निगोद रूप से होने में विरोध है। जो बादर है वो सूक्ष्म नहीं है, इसलिए बादर निगोद सूक्ष्म नहीं करना, उसका निगोद वर्गणा का आरंभ नहीं करते हैं। नगोद हुआ है वो निगोद करना, जबकि सूक्ष्म बादर नहीं है और बादर सूक्ष्म नहीं है। जो बादर है, सूक्ष्म है वो सूक्ष्म है, दोनों भिन्न है। इसलिए सूक्ष्म निगोदों के द्वारा ही सूक्ष्म निगोद द्रव्य वर्गणा आरंभ की जाती है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। ख्याल में आया ना क्या कि बादर भी निगोद वर्गणा से उसकी उत्पत्ति होती होगी, तो सूक्ष्म निगोद तो अलग ही है ना, और बादर निगोद उसकी तो जाति अलग है। बादर निगोद और प्रत्येक शरीर जीवों के मरकर सूक्ष्म निगोदों में उत्पन्न होने पर उनका बादर निगोदपन और प्रत्येक शरीरपन नहीं रहता। अब उन जीवों को सूक्ष्म जीव कहेंगे हम, जब तक वो बादर थे या प्रत्येक शरीर ही थे तो हम उसको प्रत्येक शरीर जीव कहते थे। अब मरकर यहाँ उत्पन्न हुए सूक्ष्म में तो हम उसको सूक्ष्म जीव कहेंगे। उनका बादर निगोदपना और प्रत्येक शरीरपना अभी नष्ट हो गया, वो नहीं रहता, क्योंकि विरुद्ध परिणामों की युगपद वृत्ति होने में विरोध है। एक ही समय में वो सूक्ष्म जीव भी है और प्रत्येक शरीर वाले भी है, बादर भी है, ऐसा कहना बनता नहीं। यहाँ यह अर्थ प्रधान है। इसे प्रत्येक शरीर वर्गणा और बादर निगोद वर्गणा में भी कहना चाहिए। इसे ने इस सिद्धांत को, इस वर्गणा को नहीं, ये सिद्धांत जो है उसको वहां पर भी कहना चाहिए। महास्कंद के भेद से भी सूक्ष्म निगोद वर्गणा नहीं होती। इसके ऊपर महास्कंद है तो उससे भी इसकी उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि पूर्वोक्त पुदीर्घ दोषों का प्रसंग आता है। किंतु भेद संघात से होती है। सूक्ष्म निगोद के अवांतर भेद रूप वर्गणाओं के भेद संघात से सूक्ष्म निगोद वर्गणा उत्पन्न होती है, यह उक्त कथन का तात्पर्य। अवांतर भेद ने सूक्ष्म निगोद वर्गणा में जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक हमने देखे थे। जघन्य में भी वो जल में, स्थल में, आकाश में आदि होती है। इसे एक बंधन बद्ध जो सूक्ष्म निगोद जीवों का, जो वहाँ शरीरों का समुदाय है, उसको सूक्ष्म निगोद वर्गणा कहा था। और बढ़ते बढ़ते हमने कहा मैक्सिमम देखा था सूक्ष्म निगोद वर्गणा सबसे उत्कृष्ट कहाँ पाई जाती, हमने देखा था ना कल, महामत्स्य के शरीर में। शंका, एक सूक्ष्म निगोद वर्गणा में एक विसरसोपचय परमाणु के बढ़ने पर अन्य वर्गणा होती है, क्योंकि वहां एक परमाणु अधिक देखा जाता है। पहले उन्होंने समझाया था ना एक एक परमाणु से कैसे बढ़ती है। ऐसा नहीं मानने पर पहले कहे आए स्थानों का अभाव होता है। पहले वो स्थान बता चुके हैं, अब उसके आधार से ये कुछ शंका पूछने जा रहा है। परंतु ऐसा है नहीं, इसलिए नीचे की स्थिति वाले द्रव्यों के समुदाय समागम से सूक्ष्म निगोद वर्गणा होनी चाहिए, ये नीचे की वर्गणाओं के समागम से, उसके समूह से ये सूक्ष्म निगोद वर्गणा क्यों नहीं हो सकती? समाधान, इस शंका का समाधान करते हैं। पर्यायार्थिक न्याय का यदि अवलंबन लिया जाए तो यह कहना युक्त है। फिर भी स्थान प्ररूपणा में कोई दोष नहीं, क्या कहना चाहते हो? शंकाकार ने कैसे पूछा? आप अलग अलग स्थान बता रहे हो, किसी को इतना है द्रव्य और किसी को एक परमाणु ज्यादा है, तो एक परमाणु ज्यादा है उसने स्थान अलग अलग भी है, तो एक परमाणु ज्यादा है तो उसको परमाणु आकर नीचे की वर्गणा उसमें आकर मिली ना, तभी तो वो स्थान बना आगे वाला, और आप उसको नहीं कहते हो, तो कहते पर्यायार्थिक न्याय का अवलंबन लेके हम उसको स्वीकार करेंगे। फिर भी स्थान प्ररूपणा में कोई दोष नहीं है क्योंकि वहां पर्यायार्थिक न्याय का अवलंबन लिया गया है, परंतु यहां पर द्रव्यार्थिक न्याय का अवलंबन लिया गया है, इसलिए परमाणु की वृद्धि और हानि से वर्गणा में अन्यपना नहीं आता, किंतु जीवों के समागम और भेद से सचित्त वर्गणा की उत्पत्ति होती है। क्या कहना चाहते हैं? ये जो वहां एक एक परमाणु, दो परमाणु, दस परमाणु, किसी के अधिक है, वो जीवों ने ही उसको ग्रहण करके उस रूप परिणाम आया है, तभी तो ऐसे अलग अलग जीवों में या अलग अलग पॉसिबिलिटी जो उन्होंने बताई है, किसी जीव के पास इतनी वर्गणा है, किसी के इतनी है, या कोई जो एक बंधनबद्ध है उसमें अधिक या कम परमाणु हो सकते हैं, क्योंकि जीवों के द्वारा उनको अन्य वर्गणा रूप से ग्रहण किया था ना, आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, कारमाण वर्गणा रूप से ग्रहण किया गया था और बाद में उसको उस रूप परिणमित किया है, तो उसमें एक एक परमाणु की वृद्धि देखी जाती है, परंतु उसमें ऐसा नहीं समझना कि उसने एक परमाणु अधिक लिया, दो एक परमाणु अधिक लिया, इस तरह से। तो पर्यायार्थिक न्याय के अवलंबन से एक एक परमाणु अधिक अधिक वाली वर्गणाएं देखने में आती है, फिर भी उसको उस सूक्ष्म निगोद वर्गणा कब कहते हैं? वो जीव द्वारा ग्रहण करके सूक्ष्म निगोद जीवों के द्वारा उसको ग्रहण किया है। द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से सबको वर्गणा ही कहते हैं, और पर्यायार्थिक न्याय की अपेक्षा एक एक परमाणु के भेद से स्थान है, परंतु उसने वो नीचे की वर्गणा जुड़कर वो नहीं हुआ है, जीव ने ग्रहण किया, ये महत्व की बात है। ये सचित्त वर्गणाओं में महत्व की बात क्या है? वो जीव ने ग्रहण किया है, ये खाली बाहर का एक परमाणु आकर छुप गया ऐसा नहीं है, उसको नहीं कहेंगे हम। देखो क्या कहते हैं, स्थान प्ररूपणा दोष नहीं है उसमें क्योंकि वहां पर्यायार्थिक न्याय का अवलंबन लिया है, क्योंकि सबको हम वर्गणा ही कहेंगे, क्योंकि उसका बेसिक क्या है? वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा ग्रहण करके उसको वो उस रूप परिणमित हुए हैं, परंतु यहां पर द्रव्यार्थिक न्याय का अवलंबन लिया गया है, इसलिए परमाणु की वृद्धि और हानि से वर्गणा में अन्यपना नहीं आता। जीव ने ग्रहण किया है ना, तो वो परमाणु की वो अन्य वर्गणा नहीं बनती है उसकी, किंतु जीवों के समागम और भेद से सचित्त वर्गणा की उत्पत्ति होती है। अनेक जीवों के मिलकर है, सूक्ष्म निगोद वर्गणा में तो अनेक जीवों का समुदाय है ना, वहां पर असंख्यातों का समुद्राय होगा, और सबका एक बंधनबद्ध जो है उसको हम कहेंगे वो सूक्ष्म निगोद वर्गणा, तो उसमें जीवों की संख्या कम अधिक हो सकती है, तो वहां जीवों का समागम हुआ, जीवों के भेद हुए, इसलिए नीचे के द्रव्यों के समागम से सचित्त वर्गणाएं नहीं उत्पन्न होती, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। तीनों ही सचित्त वर्गणाओं में यही रूल है कि नीचे के द्रव्यों के समागम से नहीं उत्पन्न, जीव के द्वारा ग्रहण करना यह महत्व की बात है। प्रत्येक शरीर वर्गणा में भी जो हम अग्नि कायिकादि वायु है इसमें जो देखते हैं, जल कायिकादि अनेक जीवों का समूह रूप है, इसलिए वो जीवों के समागम से हुए हैं, और उसमें भी किसी जीव के साथ ज्यादा है, किसी के कम है, उसमें भी गुणित कर्मांशिक होते, क्षपित कर्मांशिक होते, उसकी अपेक्षा से वहां वेरिएशन बन सकता है। अब आगे ये आखिरी वर्गणा तक आ गए, अभी हम महास्कंद की बात करेंगे। सुहुम निगोद वग्गणानम उवरी मा खंद दव वग्गणानाम किम भेदेन किम संघादेन किम भेद संघादेन। सूक्ष्म निगोद वर्गणाओं के ऊपर महास्कंद द्रव्य वर्गणा क्या भेद से होती है, क्या संघात से होती है, या क्या भेद संघात से होती है, यह सूत्र सुगम है। सत्थानेन भेद संघा देना, स्वस्थान की अपेक्षा भेद संघात से होती है। नीचे की वर्गणाओं के संघात से दूसरी महास्कंद वर्गणा नहीं उत्पन्न होती। हमने देखा था ना, एक ही है ना, वो महास्कंद वर्गणा हमेशा एक ही पाई जाती, क्योंकि वह सर्वत्र एक वर्गणा रूप है, उसकी संख्या एक ही है। एक आदि परमाणु पुद्गलों के बढ़ने पर अन्य वर्गणा होती है, यह कहना भी ठीक नहीं है। हमने देखा था महास्कंध में भी जघन्य से उत्कृष्ट तक विशेष अधिक जो है, तो परमाणु बढ़ा तो महास्कंध वर्गणा पलटकर कोई अन्य वर्गणा बन जाए, ये बात नहीं होती, क्योंकि एक वर्गणा को छोड़कर वहां दूसरी वर्गणा नहीं पाई जाती। महास्कंध की जैसे हमने देखी थी अभी, प्रत्येक शरीर वर्गणा अयोग्यवली में वो चार हो सकती है या आठ हो सकती है, छह हो सकती है, वैसे यहाँ कितनी होती है, एक ही एक होती है, दो चार पांच नहीं होती उसमें। किंतु वह भेद संघात से होती है, क्योंकि यहाँ पर पर्यायार्थिक न्याय का अवलंबन लिया गया है। यथा हाँ, अभी ये पर्यायार्थिक नहीं कि, क्योंकि भेद कैसे अब समझाएंगे, भेद हो गए तो विनाशी हो गया, इसलिए अभी पर्यायार्थिक नहीं का अवलंबन ले रहे हैं। महास्कंध से एक आदि अनंत परमाणु पुद्गलों के विलग हो जाने होकर चले जाने पर, महास्कंध तो पूरा ही लोकाकाश जितना बड़ा है ना, और उसमें अनंतानंत परमाणु है, तो उसमें एक परमाणु अलग हो जाए कि अनंत परमाणु विलग होकर चले जाने पर भेद से अन्य महास्कंध द्रव्य वर्गणा होती है। उसी में एक आदि अनंत परमाणु पुद्गलों के आ जाने पर संघात से अन्य महास्कंध वर्गणा होती है, परंतु एट ए टाइम एक ही महास्कंध वर्गणा है। हम देखते हैं उसमें तो कितने ही चले जाते परमाणु, को ही नए आकर मिलते हैं। तथा एक साथ उपचय और अपचय होने से भेद संघात से उपचय और अपचय यानी कितने नए आकर मिलते हैं, कितने निकल जाते हैं, तो भेद संघात से महास्कंध द्रव्य वर्गणा होती है।
इस सूत्र जो है,
हाँ,
सत्ताने भेदेन संघादेन भेद संघादेन ऐसे होना चाहिए।
भेद संघादेन एक एक टाइम में, जैसे हमने सचित्त ऐसा नहीं है। देखो जब हमने भेद से होती है, जब अन्यत्र कहा था, तो ऊपर के स्कंदों के भेद से होते ये अर्थ होता है, हाँ, परंतु ये स्वस्थान में भेद संघात होता है। स्वस्थान में उसके अन्य के वर्गणा का भेद होकर इसकी वर्गणा नहीं हुई है, जैसे नीचे की वर्गणाओं में हमने देखे थे, सांतर निरंतर वर्गणाओं तक क्या देखा था हमने, ऊपर ऊपर की वर्गणाओं के भेद होकर नीचे की वर्गणाएं बनती है, ऐसे यहाँ नहीं है। इसके ऊपर कोई अन्य वर्गणा भी नहीं है और ना ही अन्य कोई महास्कंध भी है, एक ही एक महास्कंध है। उसमें से कुछ परमाणु चले जाएंगे तो भी वहाँ जो है वो महास्कंध ही रह गया, क्योंकि उसमें जघन्य से उत्कृष्ट तक अनेक भेद हो सकते हैं, तो निकल भी जाते हैं नए आ भी जाते उसमें, इसलिए भेद और संघात दोनों बताए। इस प्रकार सर्वत्र तीन प्रकार से भेद संघात की अर्थ प्ररूपणा करनी चाहिए। ऊपरी वर्गणाओं के भेद से नीचे अपूर्व वर्गणा की उत्पत्ति भेद जनित कही जाती है। फिर उन्होंने दोबारा बताया, क्या कहते हैं, ऊपरी वर्गणा हो, अभी यहाँ महास्कंध की बात नहीं हो रही है, इन जनरल रूल बता रहे, ऊपरी वर्गणाओं के भेद से नीचे अपूर्व वर्गणा की उत्पत्ति भेद जनित कही जाती है, तब हम कहेंगे वो भेद से उत्पन्न हुआ है। नीचे की वर्गणाओं के समागम से सदृश धन रूप से अन्य वर्गणा की उत्पत्ति संघात जो कही जाती है, यानी संघात से कही जाती है, परंतु ये दोनों यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत वर्गणाओं का अभाव है, एक ही एक महास्कंध वर्गणा पाई जाती है। इस प्रकार एक श्रेणी वर्गणा निरूपणा समाप्त हुई। एक श्रेणी ने 23 हमने देखी थी ना, एक श्रेणीबद्ध, उसमें ये कैसे उत्पन्न होती है ये बात चली। पहले हमने कौन सी होती है उसमें भी एक श्रेणी और नाना श्रेणी देखी थी। नाना श्रेणी में एट अ टाइम कितनी वर्गणा होती इसका विषय लिया था, और एक श्रेणी में कौन कौन सी वर्गणा है उसको लिया था। कौन सा
ये जो बोला एक श्रेणी वर्गणा?
हाँ, एक श्रेणी वर्गणा
94 से शुरू किया था पहले।
ये भेद से होती है कि संघात से होती है उसकी बात चल रही थी। हाँ, वही अभी यहाँ खत्म हुआ।
खत्म हुई तो उसमें शुरू में जैसे एक प्रदेशी है तो उसने तो बोला था कि वो केवल भेद से होती है एक प्रदेशी, और द्वि प्रदेशी लिया था।
देखो 121 पेज से ये हुआ, आप 94 से कहाँ ले रहे हैं? वो तो पहले तो उसकी प्ररूपणा थी।
अच्छा।
अब ये जो है वर्गणा निरूपणा है। प्ररूपणा निरूपणा में क्या
है? तो इन्होंने लास्ट की जो तीन तो सचित वर्गणा, महास्कंद वर्गणा और शांतनेन्द्र वर्गणा, उनमें सब में एक ही सूत्र यूज किया सत्तानेन।
देखो देखो ये जो बात आप पढ़ रहे हैं ना, पहले जो थी वो प्ररूपणा थी। आप 120 ने पेज नंबर निकालना, 120 120 पृष्ठ कौन सा है आपके सामने? 120 है।
120 में 98।
अच्छा, 98 आप सूत्र कह रहे हैं, मुझे लगा पेज नंबर कह रहे हैं। हाँ बराबर है, 98 सूत्र से ये शुरू हुआ था। वो 98 के ऊपर क्या लिखा था? नाना श्रेणी की अपेक्षा प्ररूपणा की, उसके पहले एक श्रेणी की अपेक्षा प्ररूपणा। प्ररूपणा तो हो चुकी थी, अब ये निरूपण चल रहा है।
अच्छा।
निरूपण में वो कैसी उत्पन्न होती उसकी बात चली, भेद से होते कि संघात से होते कि भेद संघात से होते। ये 98 नंबर का जो सूत्र है पृष्ठ संख्या 120 पर, वहां से ये बात चली थी।
तो मतलब इसको मैं समराइज करने के लिए, तो 5 मिनट है ना,
एक श्रेणी वर्गणा है। ये नीचे नीचे की जो वर्गणाएं हैं शांत निरंतर तक, वो तो उसमें एक ही सूत्र था, ऊपर के भेद से और नीचे के संघात से। अभी जो एक प्रदेशी उसमें नीचे के संघात से, तो कोई वहां संघात का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि वो सिंगल है, इसलिए वो भेद से होते कहेंगे। बाकी में नीचे के संघात से, ऊपर के भेद से और स्वस्थान में भेद संघात से, तीनों ही अप्लाई। शांत निरंतर तक ये हुआ। ये जो तीन जो सचित्त है उसके लिए भेद संगात से ही होता है, इवन महास्कंध में भी। हाँ,
और बाकी ध्रुव शून्य का,
ये शून्य ही रूप है ना।
हाँ,
तो उसके उत्पन्न होने का कोई सवाल नहीं है। अब यहाँ पढ़ते हैं 134 पृष्ठ पर। अग्राह्य में वही सूत्र होगा, ऊपर के संघात भेद से और नीचे के संघात से, भले वो अग्राह्य है, जीव ग्रहण नहीं करता इसलिए उसको अग्रह है, परंतु वो एग्जिस्टिंग है, वही से वर्गणा है। यहाँ कहते हैं नाना श्रेणी वर्गणा निरूपणा इसी प्रकार करनी चाहिए। कैसी? क्योंकि नाना श्रेणी में क्या लिया था, एट ए टाइम कितनी होती है उसका ही वह, तो वो उत्पन्न कैसी होती है उसके लिए भी रूल तो वही रहेगा। एक श्रेणी में और नाना श्रेणी में निरूपण में वर्गणा कैसी तैयार होगी, भेद से या संघात से, उसमें तो कोई डिफरेंस होने वाला नहीं है। शंका, नाना श्रेणी किसे कहते हैं? उसका समाधान, सदृश धन वालों की मुक्ता फलों की पंक्ति के समान पंक्ति को नाना श्रेणी कहते हैं। सदृश धन यानी समान संख्या परमाणुओं की जो है उसको नाना श्रेणी कहते हैं। एक श्रेणी ने वो सबको मिलकर एक वर्गणा नाम दिया, जैसे हमने प्रत्येक शरीर वर्गणा नाम दिया, जगन्य से लेकर उत्कृष्ट तक जितने भेद है सबको एक वर्गणा से नाम से पुकारा। उसमें नाना श्रेणी में क्या कहेंगे, उतने जगन्य जगन्य वाले कितने हो सकते हैं? जीव तो मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, ये नाना श्रेणी हो गई है। इस प्रकार वर्गणा निरूपणा अनुयोग द्वार समाप्त हुआ। ये अभी हमने याद किया था ना अपने 98 सूत्र 120 पृष्ठ में, वहां चालू हुआ था वर्गणा निरूपण और यहाँ समाप्त हुआ। अच्छा आगे का सूत्र है। हाँ अभी देखेंगे। सूत्रकार ने 14 अनुयोग द्वारों में से 2 अनुयोग द्वारों का कथन करके शेष 12 अनुयोग द्वारों का कथन किस लिए नहीं किया है, ये प्ररूपणा और निरूपणा दो हो गए, है ना? उन्होंने पहले बोला था 53 पेज पर, हाँ, कि 16 अनुयोग द्वार होते हैं, कहाँ था? पेज नंबर 53। वहां देखो, हमने देखा था वर्गणा प्ररूपणा वर्गणा निरूपणा, ये वर्गणा ध्रुवा ध्रुवानुगम वर्गणा सांतर निरंतरानुगम आदि आदि जो है, तो उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तो सूत्रकार ने, ये शंकाकार पूछ रहा है, सूत्रकार ने 14 अनुयोग द्वारों में से 2 अनुयोग द्वारों का कथन करके शेष 12 अनुयोग द्वारों का कथन किस लिए नहीं किया है? अजानकार होने से नहीं किया है यह कहना ठीक नहीं है। क्योंकि 24 अनुयोग द्वार स्वरूप महाकर्म प्रकृति प्रावृत के पारगामी भगवान भूतबलि को उनका अजानकार मानने में विरोध आता है। भगवान का ना भूतबलि को विस्मरणशील होने से नहीं किया है यह कहना भी ठीक नहीं है, ये भूल गए होगे ये भी नहीं ठीक, क्योंकि अप्रमत्त का विस्मरणशील होना संभव नहीं है। समाधान, ये कोई प्रमादी नहीं हमारे जैसे भूल जाए कोई चीज, ये तो शंकाकार ने स्वयं बता दिया। अभी वो चाहता है कि ऐसा क्यों किया, उसका समाधान, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि पूर्व आचार्यों के व्याख्यान के क्रम का ज्ञान कराने के लिए शेष 12 अनुयोग द्वारों का कथन नहीं किया है। फिर शंका, अनुयोग द्वार वहीं पर उसके सकल अर्थ का कथन संक्षिप्त वचन कलाप के द्वारा किस लिए करते हैं? कहते आगे के न ही कहे और संक्षिप्त वचनों में ही वो सब आ गया, ऐसे क्यों कर रहे हैं? वचन कलाप है ना, वचन का समूह। समाधान, यानी वो डिटेल में क्यों नहीं बोलते, शॉर्ट में क्यों सब बता देते हैं, ऐसा कहते हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि हम जितना अधिक बोले उतना सियाने हो गए, क्यों? कि कहते वचन योग रूप आश्रव के द्वारा, ये वचन योग में भी आश्रव हो रहा है, उसके द्वारा प्राप्त होने वाले कर्मों का निरोध करने के लिए अनुयोग द्वार सकल अर्थ का संक्षिप्त वचन कलाप के द्वारा कथन करते हैं। इसलिए पूर्वोक्त 2 अनुयोग द्वारों का कथन देशामर्शक है ऐसा जानकर शेष 12 अनुयोग द्वारों का कथन करते हैं। अभी ये स्वयं वीरसेन आचार्य वो 12 अनुयोग द्वार समझाएंगे यहाँ पर। मूल में तो यही सूत्र यहीं पर खत्म हुआ था, यथा। अब आगे देशामर्शक होता है कि पार्ट उसमें आ गया, उसमें से बहुत सारा जान लेना, थोड़ा बताए बहुत जानना। तो आगे हमने सूत्र में अभी देखा था 53 पेज पर, ये जो ध्रुवा ध्रुवानुगम उसकी बात अभी बताएंगे, यानी 2 अनुयोग की चर्चा की, बाकी उसी में गर्भित है ऐसे बता रहे हैं। यथा एक श्रेणी वर्गणा ध्रुवा ध्रुवानुगम की अपेक्षा, एक श्रेणी वर्गणा में कहाँ से, वो हमने जो 23 वर्गणाएं देखी थी उसमें भी ध्रुव है कि अध्रुव है ये बात बता नहीं है। परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा, क्या ध्रुव है क्या अध्रुव है? कहते ध्रुव है, क्योंकि अतीत अनागत और वर्तमान काल में एक प्रदेशी परमाणु पुद्गल वर्गणा का विनाश नहीं होता, यानी वो हमेशा ही पाए जाते हैं। जैसे हम मार्गणा में लगाते हैं ना, सांतर है कि निरंतर है, निरंतर मार्गणा कहते थे, तो यहाँ कहते ये जो वर्गणा है वो ध्रुव वर्गणा है, हमेशा ही पाई जाएगी। शंका, ऐसा होने पर एक परमाणु का परमाणु रूप से सर्वदा अवस्थान प्राप्त होता है, उसका समाधान, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि एक परमाणु के नष्ट होने पर भी तज्जातीय अन्य परमाणुओं के संभव होने से नष्ट होने का अर्थ क्या होता है? परमाणु स्कंद रूप से हो गया, अन्य वर्गना रूप से हो गया, एक प्रदेशी था वो अनेक प्रदेशी हो गया। अन्य परमाणुओं के संभव होने से एक प्रदेशी वर्गना के ध्रुव होने में कोई विरोध नहीं आता। फिर शंका, एक श्रेणी की प्ररूपणा में नाना श्रेणी रूप परमाणुओं का ग्रहण कैसे करते हैं? क्या कहा, वो एक परमाणु अन्य रूप हुआ ना, परंतु ऐसे अनेक परमाणु है इसलिए वो ध्रुव है, तो कहते वो नाना श्रेणी हो गई। उसको अभी यहाँ क्यों बता रहे हैं? वो उसी परमाणु की बात नहीं, अन्य अन्य अनेक परमाणु वहां कायम रहते। जैसे हम कहते ना, एक जीव की अपेक्षा वो मिथ्यात्व गुणस्थान अनादि अनंत नहीं है, नाना जीवों की अपेक्षा वो चलेगा। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि इसी परमाणु से एक श्रेणी का ग्रहण होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। जब एक श्रेणी कहते हैं तो विवक्षित एक पर्टिकुलर परमाणु से उसको एक श्रेणी कहा, ऐसे कोई नियम नहीं है। अन्य अन्य परमाणु की अपेक्षा उसको एक श्रेणी कह सकते हैं। अब एक परमाणु के बारे में बतला दिया, अब कहते द्विप्रदेशी वर्गणा से लेकर ध्रुवस्कंद वर्गणा तक ये वर्गणाएं क्या ध्रुव है या क्या अध्रुव है? यहां पहले के समान कथन करना चाहिए, क्योंकि ध्रुवत्व के प्रति कोई भेद नहीं, यानी ये सभी वर्गणाएं ध्रुव है, उसमें ध्रुवपना पाया जाता है। जो सांतर निरंतर द्रव्य वर्गणाएं अशून्य रूप है, वे अशून्य रूप से क्या ध्रुव है क्या अध्रुव है? सांतर निरंतर वर्गणाएं है तो उसमें से वो तो है, तो रेंज बता दी उन्होंने यहां से यहां तक, परंतु कभी वो शून्य रूप से कभी अशून्य रूप से, अशून्य ने वो है पना, सांतर निरंतर की बात चल रही अपनी, तो कहते अध्रुव है, क्योंकि जो अशून्य है वो सदैव अशून्य नहीं रहते, कभी वो शून्य रूप कभी अशून्य रूप होती है, यानी कभी एग्जिस्टिंग है कभी नहीं है, इसलिए उसको सांतर निरंतर कहा, नाम उसका दिया, यानी पूरी पूरी नहीं होती ऐसी बात नहीं, उसमें से जो कुछ बीच बीच में। हाँ वो, हाँ जैसे जैसे मान लेते हैं कि 101 से लेकर 1000 तक के वो परमाणु की रेंज है, सांतर निरंतर, हाँ तो बीच बीच वाली कोई रहेगी उसमें से, परंतु ध्रुवस्कंद तक तो सभी होती, हमेशा ही होती, ध्रुव है वे। अभी सांतर निरंतर में वो शून्य और अशून्य लगाया, उसके पहले तक नहीं लगाया था, क्योंकि अशून्य रूप से उनका सदाकाल अवस्थान नहीं रहता। सदृश धन वाले सब स्कंदों के विनष्ट होने पर वर्गणा का अभाव होता है, तथा एक भी स्कंद के रहने पर वर्गणा है ही, ऐसा यहां अर्थ यहां ग्रहण करना चाहिए। ये तो सांतर निरंतर की बात हो गई। अब कहते शून्य वर्गणाएं शून्य रूप से क्या ध्रुव है क्या अध्रुव है? पहले अशून्य रूप से बताया, अभी शून्य रूप से बताते, यानी सांतर निरंतर की ही बात चल रही है। सांतर निरंतर वर्गणाओं में कोई शून्य रूप है कोई अशून्य रूप है, जो शून्य रूप है वो हमेशा शून्य ही रहती है क्या? तो नहीं, वो अशून्य हो जाती है, और अशून्य रूप वो शून्य हो जाती, यानी वो शून्य और अशून्य रूप से अध्रुव है। ख्याल में ना, ये ध्रुव शून्य की बात नहीं हो रही है, सांतर निरंतर वाली बात हो रही है। देखो, शून्य वर्गणाएं शून्य रूप से क्या ध्रुव है, ध्रुव बहु है, या क्या अध्रुव है, अध्रुव है, क्योंकि शून्य का अर्थ है परमाणुओं से रहित वर्गणाएं, किंतु उनका शून्य रूप से सदा अवस्थान नहीं रहता, यानी कायम वो रेंज है ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। नीचे की वर्गणाएं संघात से और ऊपर की वर्गणाएं भेद से उस काल में शून्य वर्गणा को अशून्य रूप करती है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। कभी कभी ऊपर नीचे के संघात से वो जो शून्य थी उतनी वर्गणाएं फिर उत्पन्न होती है, हाँ वो फिर अशून्य हो जाती है, या ऊपर के स्कंदों के भेद से भी वो हो जाती है। शून्य वर्गणाएं और अशून्य वर्गणाएं भी वर्गणादेश की अपेक्षा ध्रुव है। अब ये वर्गणादेश किसे कहते हैं वो अभी आगे कहेंगे। हाँ, हाँ शांत निरंतर को फिर समझाएंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सो वाणी मस्तक न हो सदा देत हो। बोलो भाई।